खुदावन यीशु मसीह के सलामती बख्श नाम में ग्लोरी टू गॉड के जानिब से तमाम नाजरीन को हमारा सलाम कबूल हो। आज फिर ये हमारी खुशनसीबी कि हम असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च इन इंडिया की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। जी हाँ, हमें यकीन है कि आज के इस प्रोग्राम में जब हम खुदा के कलाम की तलावत करते हैं आपको भी बरकत मिलेगी और मुझको भी बरकत मिलेगी। सो आइए खुदा उनके कलाम की एक इबारत पर गौर करें जो मरकुस की इंजील और उसके 12 बाब की 41वीं आयत है। आज हम इस आयत से खुदा के कलाम को कबूल करेंगे।
फिर वो हैकल के खजाने के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाने में
पैसे किस तरह डालते हैं। ये नहीं देख रहा था कितने डालते हैं, किस तरह डालते हैं। जी हाँ, आज हम आपसे बात करेंगे कि हम किस तरह खुदा का काम कर रहे हैं, किस तरह खुदा की इबादत कर रहे हैं, किस तरह हैकल में जा रहे हैं, किस तरह खुदा का एहतराम कर रहे हैं और हैकल के खजाने में किस तरह डालते हैं। खुदावंद यीशु मसीह हैकल के खजाने के पास खड़ा होकर के देख रहा है। एक आयत और पढ़वाएंगे, दूसरा तिमोथी 2 बाब और उसकी 5वीं आयत, दूसरा तिमोथी 2 बाब उसकी 5वीं आयत, जहां ऐसा लिखा है,
दंगल में मुकाबला करने वाला भी अगर उसने बाकायदा मुकाबला ना किया हो।
इस मुकाबले की फतेहाबी कायदे पर मबनी है कि क्या आप मुकाबला कायदे के मुताबिक कर रहे हैं या बेकायदा कर रहे हैं। अगर उसने बहुत कोशिश करी, बहुत मेहनत करी, लेकिन मुकाबला कायदे के मुताबिक ना किया तो खुदा का कलाम बताता कि वो सेहरा नहीं पाएगा। आज ढेरों लोग तमाम दुनिया में हैं जो नाखुश हैं। हम इबादत में गए, हम चर्च में गए, हमने खादिम से बात करी, हमने दुआएं करी, हमने कलाम पढ़ा, हमने अच्छे काम किए, हमने पैसे दिए, खजाने में पैसे दिए, पर हमें तो कुछ फायदा नहीं हुआ। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कायदे की कि आपको किस कायदे से और किस तरह खुदा की बातों को मानना और खुदा के काम को करना चाहिए। जिस तरह हो सकता है आपने खाना बनाने वक्त तमाम चीज़ें इकट्ठा करी और अच्छे से अच्छा सामान इस खाने में डाला, लेकिन एक कायदा है खाना बनाने का और उस कायदे से खाना नहीं बनाया तो खाने में वो मज़ा नहीं आएगा। अंग्रेजी में आप कह सकते हैं इंग्रेडिएंट एंड रेसिपी, रेसिपी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंग्रेडिएंट्स। जी हाँ, हम आपको इल्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि आप चर्च नहीं गए, आपको इल्ज़ाम नहीं दे रहे हैं आपने बाइबल नहीं पढ़ी, आपको इल्ज़ाम नहीं दे रहे हैं आपने गरीबों की मदद नहीं करी, आपको इल्ज़ाम नहीं दे रहे हैं कि आपने अच्छे काम नहीं किए। फिर भी अगर आप कह रहे हैं मुझको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो सेहरा नहीं पाता कौन, जिसने बाकायदा दंगल में मुकाबला नहीं किया। सो आइए हम कुछ बातों का जिक्र करेंगे। सबसे पहली बात जिसका आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, इन दिनों में ये मजमून आपके सामने हम पेश करेंगे और सिलसिलेवार बताएंगे किस काम को किस तरह करना चाहिए। आसमान के खुदा ने हर चीज़ का कायदा ठहराया है, अगर आप कायदे के मुताबिक करेंगे तो सेहरा ज़रूर पाएंगे, बरकत ज़रूर पाएंगे, काबिलियत को हासिल करेंगे और आसमान के खुदा की सताइश करेंगे। ये आज हम जिक्र कर रहे हैं कि खुदा के घर में किस तरह दाखिल हों या खुदा के घर में इबादत करने किस तरह जाएं। सबसे पहली आयत जो हम पढ़वाना चाहते हैं वो वाइस की किताब उसके 5 बाब की पहली आयत है। वाइस की किताब या सभोपदेशक की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 1वां पद, जो देखिए क्या लिखा। जी,
जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख।
कब कब और कितनी दफा आप खुदा को घर को जाते हैं, ये सवाल नहीं है। मैं ये पूछ नहीं रहा हूँ कितनी देर के लिए गए, कब कब गए, कितनी मर्तबा गए, कहाँ कहाँ गए, पर आज जब तू खुदा के घर को जाता है तो कैसे जा। पहली बात लिखी है, तो खुदा के घर को जब जाता है तो संजीदगी से कदम रख। शुरुआत, कदम रखना, जाना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह खुदा के घर को जाएं। संजीदगी से कदम रखना, खुदा के घर को जाने का तरीका जबूर 100 और उसकी 2 आयत और 4 आयत में कुछ लिखा है। देखिएगा जबूर 100 उसकी 2 आयत और फिर 4 आयत। जी,
खुशी से खुदावंत की इबादत करो।
इबादत करने खुदा के घर को जाता है तो पहली चीज का जिक्र लिखा है कि दिल में खुशी लेकर के कि हम खुदा के घर को जा रहे हैं, गम से नहीं, तकलीफ से नहीं, जबरदस्ती नहीं, लेकिन खुशी से, आजाद मर्जी से मैं जाना चाहता हूं, मैं इबादत करना चाहता हूं, मुझे इबादत करना अच्छा लगता है। जब तू खुदा के घर को जाए तो संजीदगी से कदम रखना, बनावटी तौर से खुदा के घर को मत जाना, संजीदगी से कदम रखना। जी हाँ, पहले लिखा है तू खुशी से, जी आगे क्या लिखा है,
गाते हुए उसके हुजूर
कैसे जाना, गाते हुए जाना, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर होना। अगर मैं यहीं ख़त्म कर दूं तो आप ये कह सकते हैं भैया गीत तो बहुत तरह के लोग गा रहे हैं, गीत ये भी गा रहे हैं, मर गया लुट गया उसने मेरा साथ नहीं दिया, ये भी तो गीत हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि न सिर्फ खुदा के घर को जाने में संजीदगी से आपको कदम रखना है, न सिर्फ आपको खुशी और गीत गाते हुए जाना है, पर गीत का नमूना भी लिखा हुआ है। चौथी आयत में देखिए क्या लिखा है, गीत का नमूना, किस किस्म के गीत गाते हुए खुदा के घर को जाएं। आप किसी के घर में जाइए और इस तरह के बुड़बुड़ाने वाले और कुड़कुड़ाने वाले गीत गाते हुए जाइए, वो शख्स नाखुश हो जाएगा और शायद हो सकता है मजबूर हो जाए कि आपसे क्या भैया अब आप हमारे घर मत आया करिए। यहां जब तू खुदा के घर को जाना तो सिर्फ गीत गाते हुए नहीं बल्कि गीत लिखे किस किस्म के गीत गाते जाना। सुनिए,
शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में,
शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में
और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में
दाखिल हो। जब तुम हम्द करना, जब तुम गीत गाना तो हम्द के गीत गाना और शुक्रगुजारी के गीत गाना, तारीफ के गीत गाना, बड़ाई के गीत गाना, खुदा से खुशी के साथ खुदा के घर में संजीदगी के साथ दाखिल होना, सवालात लेके दाखिल ना होना, कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हुए दाखिल ना होना। मुझे नहीं मालूम आप कितने सालों से खुदा की इबादत कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आप कितनी मर्तबा खुदा के घर में गए, मुझे नहीं मालूम कितनी दफा आपने लोगों को पैसे दिए और गरीबों को खाना खिलवाया और अच्छे काम किए, पर सवाल ये पूछ रहा हूं कि अगर आज खुदावंद यीशु मसीह बैठा आपके खुदा के घर में जाने के तरीके को देख रहा होगा तो क्या उससे खुश हो रहा होगा? वो बैठा देख रहा है कि लोग किस तरह से खुदा के घर को जा रहे हैं, संजीदगी से जा रहे हैं या बेसंजीदगी से जा रहे हैं, खुशी से जा रहे हैं, नगमसराई करते हुए जा रहे हैं, खुदा की तारीफ करते हुए जा रहे हैं, उसकी बड़ाई करते हुए। जब तू खुदा के घर को जाना तो संजीदगी से कदम रखना, नगमे गाते हुए जाना, शुक्रगुजारी के नगमे गाते हुए जाना, खुदा की ताजीम के नगमे गाते हुए जाना। मैं चाहूँगा जबूर 84 उसकी 10वीं आयत पढ़िए, जबूर 84 उसकी 10वीं आयत। यहाँ खुदा का बंदा दाऊद नवीस कुछ कह रहा है खुदा के घर के बारे में। जी हाँ,
क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन हजार से बेहतर है।
ये कह रहा है खुदा बाप, तेरी बारगाहों में अगर एक दिन जाने को मिल गया तो हजार दिन से बेहतर है। दुनिया के किसी भी बड़ी जगह में हजार बार जाने से अच्छा है एक बार तेरी बारगाहों में। इसको खुदा की बारगाहों की खूबी मालूम है, इसको मालूम है कि खुदा की बारगाहें कैसी हकीकत रखती हैं इसकी जिंदगी में। क्या आपको पता है कि खुदा के बारगाहों का एक दिन और जगहों की बड़ी जगहों के हजार दिन से बेहतर है? और आगे ये कह रहा है, सुनिए,
मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना,
मैं जब खुदा के घर में जाऊंगा तो मैं ये ख्याल करके जाऊंगा कि मुझे अगर गेटकीपर या दरबान बना दें, दरवाजे पर खड़ा कर दें। ये ईस्टर्न कल्चर में है, हिंदुस्तानी नुक्ते निगाह से बड़ी छोटी और नीची चीज है किसी को दरवाजे पर खड़ा कर दिए, किसी से भी कह दिया भैया तुम दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो बुरा मान जाता है। आप किसी को भी नौकरी दिलाइए दरबान की, वो बुरा मान जाता है। किसी की लड़की की शादी किसी दरबान से लगाइए, वो बुरा मान जाता है, क्योंकि दरबान छोटा आदमी कहलाता है, गरीब आदमी कहलाता है। पर ये खुदा का बंदा कह रहा है कि मैं खुदा के घर का अगर दरबान तक बना लिया जाऊं तो ये मेरे लिए बड़ी भारी चीज है। वाह, क्या आपकी जिंदगी और आपके जिगर में, आपके ख्यालात, कयासात और तस्वुरात में आसमान के खुदा के घर की इतनी कीमत है कि आप कह रहे हैं कि खुदा बाप अगर अपने घर में मुझे दरबान ही बना ले। मत लड़िए कि आप वहां के डायरेक्टर हो या लीडर हो या क्वायर डायरेक्टर हो या प्रीचर हो या खास आदमी हो, सब आपकी इज्जत करें, सब आपसे हाथ मिलाएं, पूरी इबादत में आपका जिक्र हो, पूरी कन्वेंशन में आपका नाम लिया जाए, आपका नाम फोल्डर में हो, आपका नाम बोर्ड पर चस्पा हो, सब लोग आपका जिक्र करें, जरूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इबादत आसमान के खुदा की तरफ से कबूल करी जाए, अगर आप चाहते हैं आप सेहरा पाएं, अगर आप चाहते हैं वो यीशु मसीह जो बैठकर आप देख रहा है कि किस तरह लोग मेरी इबादत कर रहे हैं, तो आप इबादत गाह में जाते वक्त ये ख्याल लेके जाइए कि अगर खुदा मुझे अपने घर का दरबान भी बना ले तो बहुत बड़ी बात है। कुछ भी खुदा मुझसे अपने घर में करा ले, पर मैं खुदा के घर जाना चाहता हूँ, मैं खुदा की इबादत करना चाहता हूँ, मैं खुदा के गीत गाना चाहता हूँ, मैं खुदा का बंदा कहलाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे खुदा का आबिद परस्तार बंदा समझें। मैं चाहूँगा एक और आयत पढ़ें जो आपको 27 जबूर की 4 आयत में कुछ खास बातें मरकूम मिलेंगी। जी हाँ,
मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की।
अगर आपको मौका मिल जाए आसमान के खुदा से एक दरख्वास्त करने का, तो जरा सोचिए आप क्या मांगेंगे। मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतनी चीजें आपके कलेजे में हैं जो आप आसमान के खुदा से मांगना चाहते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा कौन सी चीज मांगे कौन सी ना मांगे। ये कह रहा है, मैंने आसमान के खुदा से खाली एक चीज मांगी है, एक चीज की दरख्वास्त करी है। क्या मांग रहा है सुनिएगा,
मैं इसी का तालिब रहूंगा,
मैं वही मांगता रहूंगा, वही उसी चीज का तालिब रहूंगा, बदलूंगा नहीं अपना ख्याल, अपनी मांग और अपनी दरख्वास्त बदलूंगा नहीं, मैं अपनी जुस्तजू और अपनी तमन्ना बदलूंगा नहीं, मैं खाली एक ही चीज खुदा से मांगूंगा। क्या है भाई, कौन सी चीज है, पढ़िए जरा।
कि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूं।
खुदा के घर में रहना इतनी खास बात है कि कोई दूसरी बात मांगने को तैयार नहीं, सिर्फ एक बात मांग रहा है कि मैं उम्र भर खुदा के घर में रहूं। खुदा के लोगों, तुम्हारे पास बहुत सी तमन्नाएं होंगी, तुम बहुत सी दुआएं कर रहे होगे, तुम्हारे पास बहुत सी दरखास्तें होंगी, पर आज मुझको और आपको ये मालूम होने की जरूरत है कि आसमान का खुदा बैठे देख रहा है कि हमारी क्या तमन्ना है। क्या हम खुदा के घर में जाकर दरबान बनना, उसके घर में नगमे गाना, नगमे गाते उसके घर में जाना, संजीदगी से कदम रखना और खुदावन की खुदाइयत को अव्वल दर्जा देने के दरपई हैं या नहीं। कह रहा है सुनिएगा, मैंने एक बात की दरख्वास्त की है और उसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदा के घर में रहूं। क्यों?
ताकि खुदावन के जमाल को देखूं।
कमाल की बात है, ये नहीं कह रहा ताकि मैं वहां बहुत इंपॉर्टेंट शख्स बन जाऊं, ताकि सब लोग मुझे देखें, ताकि मैं खुदा के जमाल को देखूं, सुंदरता को देखूं, खूबसूरती को देखूं। आसमान का खुदा इतना खूबसूरत है और उसमें इतना जमाल है, उसमें इतनी कशिश है, उसमें उतना आसमान है, इतनी बरकत है, इतनी खुशी है, इतनी इकबाल मंदी है, इतनी तरक्की है कि ये खुदा का बंदा कह रहा है मैं खुदा के घर में जाकर सिर्फ खुदा को देखना चाहता हूं। वाह, मुझे बताइए, क्या पिछली दफा जब आप इबादत खाने में गए थे, खुदा के घर में गए थे, तो क्या आप खुदा को देखने गए थे या औरों को देखने के लिए गए थे, या किसी शख्स को देखने गए थे, या बिल्डिंग को देखने गए थे, या शैंडलियर को देखने गए थे, या बिल्डिंग की बनावट को देखने गए थे, क्या देखने गए थे? ये पूछा तो खुदावंद यीशु मसीह ने कि तुम बयाबान में क्या देखने गए थे। हम जाते हैं और मुख्तलिफ चीजों के लिए, पर क्या आप खुदा के घर में जाते वक्त संजीदगी से कदम रख रहे हैं? क्या आप दिल के इंतहाई हिस्सों से आसमान के खुदा की इबादत करने हैं, खुदा की तमजीद करने, खुदा की बड़ाई करने, खुदा की तारीफ करने और खुदा के जमाल को देखने के लिए, खुदा की खूबसूरती को देखने के लिए कि खुदा कितना हसीन है, खुदा के घर जा रहे हैं? जब आप खुदा के घर भी जाए तो आप ये कहते जाएगा, आज मेरी मुलाकात खुदा से होगी, वो इतना हसीन है और मेरी ख्वाहिश तो यह है कि मैं जिंदगी भर खुदा के घर में ही रहूं, मेरे घर में खुदा का घर बन जाए, मेरे रास्तों में खुदा का घर बन जाए, मेरी रिहाइश ताबद खुदा के घर में हो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बैठे आज हमारे दिल की तमन्ना को देख रहे हैं कि हम क्यों खुदा के घर जा रहे हैं, क्या वजह है और किस तरह जा रहे हैं, किस तैयारी से और किस ख्याल से जा रहे हैं खुदा के घर में। मैं चाहूंगा एक आयत और पढ़ दीजिए और वो आपको मिलेगी, जबूर 52 उसकी 8 आयत, जबूर 52 और उसकी 8 आयत, यहां कुछ इस तरह से लिखा है। जी,
लेकिन मैं तो खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानिंद हूं।
ये कह रहा है मैं खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानिंद हूं और कुछ नहीं बता रहा अपने आपको। हमने इतनी मर्तबा इतनी जगह पढ़ा है, वहां कहीं जैतून के दरख्त का कोई जिक्र नहीं लिखा है। फिर मैं सोचने लगा, खुदा बा, ये तेरा बंदा क्यों ये ख्वाहिश कर रहा है कि मैं खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानिंद हूं? तब मेरा ख्याल पुराने अहदनामे की एक आयत पर गया, यानी खुरूज की किताब के 27:20 आयत पर, तो वहां ऐसा लिखा हुआ मुझे मिला। जरा सुनिए क्या लिखा है,
और तू बनी इसराइल को हुक्म देना,
तू बनी इसराइल को हुक्म देना, ये खुदा ने आसमान से कहा था मूसा से कि तू बनी इसराइल को हुक्म देना
कि वो तेरे पास कूट कर निकाला हुआ,
कि वो तेरे पास कूट कर निकाला हुआ
जैतून का खालिस तेल,
जैतून का खालिस यानी प्योर तेल लाएं,
रोशनी के लिए लाएं,
रोशनी के लिए लाएं,
ताकि चिराग हमेशा,
ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। आसमान के खुदा की मर्जी यह थी कि खुदा के घर में चिराग जलाने के लिए जैतून के हरे दरख्त से तेल निकाला जाए और वो तेल से चिराग जलता रहे। और ये खुदा का बंदा ये दरख्वास्त और ये ख्वाहिश कर रहा है कि खुदा बाप मुझे अपने घर का हरा जैतून बना ले, ताकि मेरे अंदर से जो तेल निकले है वो तेरे घर में रोशनी बख्शे। खुदा के लोगों, दूर पास से मेरी आवाज सुनने वालों, गरीब और अमीर, मैं आज ये तमन्ना कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम भी यही तमन्ना करोगे कि मैं खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानंद हूं, चाहे मैं पिट जाऊं और कुचल जाऊं, मरोड़ा जाऊं, पर मेरे अंदर से एक ऐसा तेल निकले है जो रोशनी के लिए खुदा के घर में इस्तेमाल हो, और जहां कहीं मैं जाऊं मैं वहां रोशनी पैदा करूं, आसमान के खुदा का घर बर्पा करूं और बना दूं। आपकी जिंदगी रोशनी बख्श जिंदगी हो, आपकी बातें रोशनी बख्श बातें हो, आपकी मुसीबत और परेशानी, आपको कुचले जाने और निचोड़े जाने से तेल निकले जो खुदा के घर में रोशनी पैदा करे। मैं खुदा के घर में दरबान बनना चाहता हूँ, मैं खुदा के घर में खुदा का मोहताज और खुदा को देखना चाहता हूँ, मैं खुदा के घर में खुदा की शक्ल पे हमेशा के लिए अपने आप को निसार करना चाहता हूँ, मैं खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानिंद होना चाहता हूँ, ताकि मुझ में से तेल निकले और खुदा के घर में रोशनी पैदा हो। खुदा के घर में मेरे वसीले से लोग बरकत पाएँ, इस दुनिया में मेरे वसीले से लोग बरकत पाएँ। एक बंदे के बारे में लिखा है जो मूसा की मौत के बाद बनी इसराइल का पेशवा हुआ और 6.5 लाख मर्दों को मुल्के कनान से, जो मुल्के मिस्र से मुल्के कनान जा रहे थे, उनका पेशवा हो और उनको मुल्के कनान तक पहुंचाए। उसके बारे में लिखा है, जब मूसा खुदा के घर में जाता था तो यहोशू दरवाजे पर खड़ा रहता था, उसे ये भी नहीं मालूम कि मालिक कितनी देर बाद लौटेंगे, मूसा कितनी देर बाद बाहर निकलेंगे, घंटा भर, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, सुबह से शाम तक वो दरवाजे पर खड़ा रहता था। तब आगे लिखा है, मूसा तो वहां से निकल करके अपने तंबू में चला जाता था, पर यहोशू खुदा के घर के दरवाजे पे खड़ा रहता था। उसको खुदा के घर के दरवाजे पे खड़ा रहने का ऐसा शौक था कि एक दिन खुदा ने आसमान से आवाज दी और कहा, मूसा तेरी जगह मेरा बंदा यहोशू मेरा पेशवा बनेगा और मेरे लोगों को मुल्के कनान तक पहुंचाएगा, क्योंकि उसको मेरे घर के दरवाजे पे खड़े रहने का शौक है। उसको मालूम है कि मेरे घर के दरवाजे पे खड़े रहने की क्या इज्जत है। आसमान का खुदा आपसे मोहब्बत करता है, पर आपके ख्याल देखना मांगता है। आज बैठ कर यीशु मसीह देख रहे हैं कि लोग किस तरह मेरे घर को जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस ख्याल से जा रहे हैं। कोई इलेक्शन के लिए नहीं, कोई नामवरी के लिए नहीं, कोई टाइटल के लिए नहीं, किसी पैसे के लिए नहीं, किसी लालच के लिए नहीं, कोई रुतबे के लिए नहीं, कोई दर्जे के लिए नहीं, पर आसमान के खुदा के घर में दाखिल होइए गीत गाते हुए, सिताइश करते हुए, सिर्फ खुदा की इबादत के लिए, ताकि मैं जैतून के हरे दरख्त की मानिंद आसमान के खुदा के घर में रोशनी पैदा करूं। खुदा के लोगों, आज हमारी तमन्ना है कि तुमसे रोशनी पैदा हो जो इस जहां को रोशन अंगेज करे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे नेक कामों को देखकर मेरे बाप की जो आसमान में है तमजीद होगी। क्यों? तुम अपनी रोशनी आदमियों के सामने इस तरह चमकाओ, हमारी जिंदगी रोशनी बन जाए, जब हम कुचले जाएं तो तेल निकले, जब हम मरोड़े जाएं तो जैतून का खालिस तेल पैदा हो और वो तेल रोशनी पैदा करे, और हमारे कुचले जाने, मरोड़े जाने और हमारे दुख, तकलीफ और मुसीबत उठाने से आसमान के खुदा और उसके घर में रोशनी हो सके। ये तुम्हारी और मेरी तमन्ना होनी चाहिए। आए पापा, आए मम्मी, भाई, दीदी, पादरी साहब, छोटे बच्चे, जवान, खुदा करे तुम्हारे दिल से ये आवाज निकले कि मैं खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानिंद हूं। हम दुआ करेंगे कि आप खुदा के घर में जैतून के हरे दरख्त की मानिंद हों। मेरे साथ दुनिया के किसी कोने में आप क्यों ना हों, आप मुसाफरत कर रहे हैं, अपने घर में हैं, बिस्तर पर हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आप रो रहे हैं, आपके हालात बहुत ख़राब हैं, आज तक आप सोच रहे हैं मुझे कोई अजर नहीं मिला, मैं इतना चर्च गया, मैंने इतनी दुआ करी, इतने पैसे खर्चा करे, मैंने इतने लोगों मदद करी, पर मुझे कभी सेहरा नहीं मिला। सेहरा तब मिलेगा जब आप बाकायदा मुकाबला करेंगे। आज कह दिए खुदा मुझे माफ़ कर, मैंने गलत मुकाबला किया, मैंने तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे घर नहीं गया, मैं कभी भी तेरे घर में जा कर के नगमे गाने सिताइश करने बड़ाई करने हैं और तेरे घर दरबान बनने के ख्यालात से नहीं गया, मैं दरवाजे पे खड़ा नहीं रहा, मैं खुशी से दाखिल नहीं हुआ, मैंने अपने आप को जैतून के हरे दरख्त की मानिंद तेरे हाथ में सुपुर्द नहीं किया कि मैं कुचला जाऊं निचोड़ा जाऊं, मुझसे तेल निकले और तेरे घर में रोशनी पैदा करे, मुझे माफ़ कर। जब आप ये कहेंगे तो खुदा बाप आपको नई जिंदगी अता करेगा। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदाबंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी आवाज़ के लिए जो फर्द पर गूंज रही है, इसके वसीले से खुदावन आज हम तय कर सकें कि अब हम अपनी बकिया जिंदगी में मुकाबला खुदा की मर्जी के मुताबिक करेंगे, कायदे के मुताबिक, और हम सेहरा पाएंगे। बरकत दे खुदावन, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।